19 अक्टूबर दिन बुधवार दिन भर मैं हूं रेहान फजल। मौसूल से निकलने वाले लोगों की हालत खस्ता हाल, उनके लिए मौजूद सहायता सामग्री पर्याप्त नहीं।
There is not enough assistance there. It's coming too little, too late, and it has to be stepped up. It is a remote.
बात करेंगे जेएनयू से गायब हुए छात्र नजीब अहमद की माँ फातिमा नासिर से।
मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए, मेरे बच्चों को हाजिर किया जाए, जहाँ भी है उसको मेरे सामने लाके रखा जाए, मैं अपने बच्चों को लेके चली जाऊंगी, प्लीज मेरी मदद करें।
और दुनिया जहान में चर्चा होगी थाईलैंड के महाराजा के निधन के बाद वहाँ के हालात पर। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, इकबाल अहमद से। इराक में खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन के कब्जे वाले मौसूल शहर से हजारों लोग पलायन कर रहे हैं। जैसे जैसे इराकी और कुर्द सेना मौसूल के करीब पहुंच रही है, वहां रह रहे लोग भाग रहे हैं वहां से। शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था सेव द चिल्ड्रेन के अनुसार पिछले 10 दिनों में 5,000 से ज़्यादा लोग सीमा पार कर सीरिया में बनाए गए राहत शिविरों में पहुंचे हैं। एजेंसी का कहना है कि कैंपों की हालत बेहद ख़राब है और आने वाले दिनों में शरणार्थियों की संख्या और बढ़ सकती है। इस बीच कुर्दों की राजधानी इरबिल में स्थित मार शिमोन चर्च में कई ईसाई शरणार्थी जमा हुए हैं। वो यहाँ आईएस चरमपंथियों के कब्जे से ईसाई शहर काराकोश को खाली कराने की सैन्य कार्रवाई पर खुशी जताने के लिए जमा हुए हैं। उनमें से एक हाजिम कारडोमी, जो कि पेशे से एक पत्रकार हैं, वो कहते हैं, हम लोग सुबह से सुन रहे हैं कि काराकोश, बारतोला और कारमाइंस शहर को आज़ाद करा लिया गया है। हम लोग पेशमर्ग और इराकी सेना के शुक्रगुजार हैं। आप यहाँ चर्च के पास लोगों का जश्न देख सकते हैं। एक इराकी ईसाई हाजिम कारडोमी के शब्द। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने कांगो के पूर्व उपराष्ट्रपति जेन पियर बेम्बा को सबूतों के साथ छेड़छाड़ का दोषी करार दिया है। अदालत के अनुसार बेम्बा और उनके साथियों ने 4 गवाहों को घूस दिया और ये बताया कि उन्हें अदालत में क्या कहना है। बेम्बा पहले ही युद्ध अपराध के दोषी पाए जा चुके हैं और उन्हें 18 साल की जेल की सजा सुनाई जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के इतिहास में यह भ्रष्टाचार का पहला मामला है। रूस, यूक्रेन और फ्रांस के नेता यूक्रेन शांति वार्ता के लिए आज बर्लिन में जमा हो रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने इस बैठक से कोई खास उम्मीद नहीं जताई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक प्रवक्ता ने कहा कि रूस को इस वार्ता से किसी भी नतीजे की कोई उम्मीद नहीं है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने भी किसी चमत्कार की आशा से इनकार किया है, लेकिन इतना कहा है कि इसमें कोई भी सफलता हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने बांग्लादेश से दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन के करीब बन रहे कोल पावर स्टेशन के काम को रोकने की अपील की है। यूनेस्को और इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन फॉर नेचर ने कहा है कि बांग्लादेश और भारत के संयुक्त साझेदारी से बन रहे रामपाल प्लांट से सुंदरबन के जंगलों को गंभीर खतरा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। शुरुआत करते हैं इराक से। इराक के मौसूल शहर से पलायन करने वाले हजारों इराकी नागरिक कठिन परिस्थितियों में फंसे हैं। इराकी सुरक्षा बल मौसूल को इस्लामिक स्टेट से मुक्त कराने के लिए 2 दिन से फौजी अभियान चला रहे हैं। आज इसका 3रा दिन है। सहायता एजेंसी सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि पिछले 10 दिनों में इराक की सीमा पार कर सीरिया में राहत शिविरों में करीब 5,000 लोग पहुंच चुके हैं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे संवाद के साथ अमर शर्मा।
शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने बीबीसी को बताया है कि मोसुल से निकलकर 900 से ज्यादा लोग सीरिया पहुंचे हैं। इराकी सीमा पार कर आए इन इराकी नागरिकों को सीरिया में बने शरणार्थी शिविरों में रखा गया है। मोसुल को इस्लामिक स्टेट चरमपंथियों से आजाद कराने के लिए इराकी सुरक्षा बल और अमरीकी गठबंधन सेनाएं फौजी अभियान चला रहे हैं। अभियान के शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया है कि बड़ी संख्या में लोग मोसुल से निकल रहे हैं। सहायता संस्था सेव द चिल्ड्रेन का कहना है कि सीमा पार सीरिया में अल होल शहर में बने शरणार्थी शिविरों में पिछले 10 दिनों के दौरान करीब 5,000 लोग पहुंच चुके हैं। मोसुल में संस्था के प्रमुख तारिक कादिर ने इरबिल से इन राहत शिविरों के बारे में बताया।
I had the chance to visit Al Hol about a month ago, at which point there were 3,000 people.
मैं करीब एक महीने पहले अल होल गया था। उस वक्त वहाँ 3,000 लोग गर्मी और धूल भरे हालात में रह रहे थे। उनके लिए पीने का पानी रोज ट्रक में लाया जाता था और तब की तुलना अभी वहाँ 3 गुना लोग रह रहे हैं। वहाँ पर्याप्त सहायता नहीं पहुँच रही है। जो सहायता मिल भी रही है वो नाकाफी है और देर से पहुँच रही है, जिसे बढ़ाना होगा। वो बहुत दूर दराज का इलाका है जहाँ पहुँचना मुश्किल है। वहाँ जरूरी सहायता पहुँचाने के लिए सभी पक्ष अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं।
सेव द चिल्ड्रेन के तारिक कादिर के शब्द। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के मोसुल से निकलने का मतलब ये है कि जैसे जैसे इराकी सैनिक और कुर्द लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं, इस्लामिक स्टेट लोगों को वहाँ से निकलने से रोक नहीं पा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक मोसुल में करीब 15 लाख लोग रह रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि मोसुल से लोगों को निकालने के लिए योजनाएं और संसाधन तैयार हैं। ओबामा ने मोसुल की जंग को इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ युद्ध में एक बड़ा कदम बताया है। ओबामा ने कहा कि ये लड़ाई मुश्किल होगी।
I am confident that we can succeed, although it's going to be a tough fight and a difficult fight.
मुझे यकीन है कि हम सफल होंगे, हालांकि ये एक कठिन और मुश्किल लड़ाई होने वाली है। इराकी प्रभावी तरीके और बहादुरी से लड़ रहे हैं और कई लोगों को मारा है। इस प्रक्रिया में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आखिरकार जीत हमारी होगी।
बराक ओबामा के शब्द। मोसुल में इस्लामिक स्टेट के करीब 5,000 चरमपंथियों के मौजूद होने का अनुमान है। अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा है कि उन्होंने 10 गांवों से आईएस को खदेड़ दिया है। अमरीका का कहना है कि इराकी सुरक्षा बल जैसे जैसे इस्लामिक स्टेट के मजबूत गढ़ मोसुल के नजदीक बढ़ रहे हैं, आईएस नागरिकों का इस्तेमाल ढाल के रूप में कर रहा है। वॉशिंगटन में रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता जेफ डेविस ने इसकी पुष्टि की है कि आईएस की ओर से आम लोगों का इस्तेमाल ढाल के रूप में किया जा रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स को मोसुल के कुछ निवासियों ने फोन पर बताया था कि आईएस ने कुछ लोगों को उन इमारतों की ओर जाने को कहा है जिनको हवाई हमले में निशाना बनाया जा सकता है।
मोसुल से भागने वाले इराकी नागरिकों की हालत खराब।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब कुछ खबरें भारत से। भारत के दौरे पर आई म्यांमार की विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते भी हुए। दोनों पड़ोसियों ने पिछले कुछ वर्षों में एक दूसरे से मिली मदद का धन्यवाद दिया और आगे की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर भी किए। नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
वी आर नो स्ट्रेंजर टू द पीपल ऑफ इंडिया। द साइट्स, द साउंड्स एंड वाइब्रेंसी ऑफ दिल्ली आर फैमिलियर टू यू। वेलकम बैक एक्सलेंसी टू योर सेकेंड होम।
भारतीयों के लिए आप कोई अजनबी नहीं है और दिल्ली के नज़ारों और शहर के मिजाज आपको भली भांति पता है। अपने दूसरे घर में आपका स्वागत है। ये थे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 3 दिनों की भारत यात्रा पर आई म्यांमार की सबसे कद्दावर नेता नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की प्रमुख आंग सान सू ची का स्वागत किया। जगह थी दिल्ली का ऐतिहासिक हैदराबाद हाउस, जहां दोनों देशों के बीच आर्थिक और कारोबार जगत के 3 बड़े समझौते भी हुए। अपनी पार्टी के सत्ता में आने के बाद ये आंग सान सू ची की पहली भारत यात्रा है और उन्होंने खुद भी इस बात को दोहराया कि उन्हें विश्वास है कि भारत म्यांमार की तरक्की में मददगार साबित होगा।
We are going to be cooperating in the areas of construction, energy, agriculture, archaeology, education.
सू ची कह रही थी कि म्यांमार और भारत निर्माण और ऊर्जा क्षेत्र के अलावा कृषि, पुरातत्व और शिक्षा के क्षेत्रों में भी परस्पर सहयोग करेंगे। म्यांमार की नेता की यात्रा एक ऐसे माहौल में हो रही है जब भारत ने दक्षिण एशियाई और पूर्वी क्षेत्रों में अपनी कूटनीति तेज कर रखी है। इस वर्ष अगस्त महीने में ही म्यांमार के राष्ट्रपति भी भारत यात्रा पर आए थे। खुद सू ची ने अपनी यात्रा के दौरान दोहराया है कि किसी भी तरह का चरमपंथ निंदनीय है। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर भारत को म्यांमार में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों हो रही है। म्यांमार में पूर्व भारतीय राजदूत विवेक काटजू।
सामरिक दृष्टि से म्यांमार भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आर्थिक दृष्टि से, कनेक्टिविटी की दृष्टि से भारत सरकार अब लुक ईस्ट ही नहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपना रही है। और मैं ये भी जानता हूँ कि म्यांमार के सब वर्ग, चाहे वो सैनिक हों या सिविलियन हो, जनता हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सब चाहते हैं भारत से रिश्ते बढ़ाएं।
जैसा कि नरेंद्र मोदी ने भी कहा, आंग सान सूची भारत के लिए कोई अजनबी नहीं। दिल्ली में उनके कई पारिवारिक मित्र हैं और खुद भारत ने हमेशा म्यांमार में लोकतंत्र स्थापित करने वाले आंदोलन में उनका भरपूर साथ दिया है। मैंने कुछ देर पहले दिल्ली स्थित वरिष्ठ पत्रकार हिरण्मय कार्लेकर से बात की और पूछा, परसों जब सूची उनके घर रात के खाने पर गई थी तो माहौल कैसा था? हिरण्मय कार्लेकर:
उनका भारत के प्रति सभी बहुत हर टाइम ही बहुत पॉजिटिव आउटलुक थे। माता जी यहाँ पर एम्बेसडर थे, दौकिंची। उनका पिताजी तो बर्मा का आजादी के लड़ाई में सबसे बड़ा नेता था, तो हमारे भारत के प्रति उनका एक पॉजिटिव मनोभाव शुरुआत से है, उसी का हम रूपायण देखा ये विजिट में।
मंगलवार को सूची ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी लंबी बातचीतें की थीं। लेकिन क्या भारत को म्यांमार में चीन के बढ़ते प्रभाव की भी चिंता है? पूर्व राजदूत विवेक काटजू को सुनिए।
चीन भी पड़ोसी देश है म्यांमार का, भारत भी पड़ोसी देश है। मैं किसी प्रकार की स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन नहीं देखता। हमारा अपना रोल है, हमारी अपनी अहमियत है रीजन में और म्यांमार में, और वो कायम रहे। किसी प्रकार से चीन का दबाव हम पर नहीं पड़ता।
हालांकि नोबेल पुरस्कार विजेता सूची ने म्यांमार की प्रमुख की हैसियत से ये यात्रा नहीं की थी, क्योंकि वहां का संविधान उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन सूची सरकार की सबसे बड़ी नेता हैं और इसीलिए उनकी इस यात्रा को पूरे दक्षिण एशिया में खासे महत्व से देखा जा रहा है। नितिन श्रीवास्तव, BBC, दिल्ली।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि वो गायब हुए छात्र नजीब अहमद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है और CBI से भी मदद की गुहार लगाई गई है। मामला 14 अक्टूबर की रात माही मांडवी हॉस्टल का है, जब रिपोर्टों के मुताबिक कुछ छात्रों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद नजीब लापता है। BBC संवाददाता विनीत खरे ने नजीब अहमद की माँ फातिमा नसीर से बात की।
50 के लोगों को दे चुकी है, मेरा बच्चा मुझे चाहिए, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मैं ज्यादा बात करने की कंडीशन में नहीं हूँ, मेरा बच्चा मुझे ला दें कहीं से भी। मेरा बच्चा तो इतना सीधा भोला, बहुत ही, किसी से भी पूछें आप, उसके क्लासमेट से मालूम करें, स्टाफ से, टीचर स्टाफ से मालूम करें, मेरा बच्चा बहुत ही नेक और शरीफ है, वो किसी बात से को मतलब ही, पढ़ाई पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई सर।
फातिमा जी, आपके पास पुलिस आई है और आपसे क्या कोई जानकारी दी है आपको?
सर, मैं जब देकर आई थी उनको, दिखाकर आई थी कंप्लेन, उसके बाद वो मुझसे परसों मिले थे, परसों से उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की है। परसों भी उन्होंने मुझसे बात ही की थी कि लिखवाया था, बस एस्टीमेट लिया दोबारा से, बाकी कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सर, मेरा बच्चा कहाँ छुपाया है, इन लोगों ने कहाँ रखा है, उसके इतनी चोटें आई हुई हैं, कहाँ है वो, उसका कुछ पता नहीं, ना उसने सुबह में नाश्ता किया है, दोपहर में खाना खाया है, भूखा प्यासा सब कुछ, कहाँ बंद के रखा है, तो कुछ हो गया तो क्या होगा सर उसको।
फातिमा जी, आखिरी बार आपकी उनसे बात कब हुई थी?
सर, मेरी बात उससे आनंदिहार 2 सप्ताह में पहुंची हूँ, तो 11 बजे लगभग हुई है, ये सैटरडे वाले दिन
शनिवार को
कांड हुआ था, तो उसके बाद रात में उसने मुझे फोन करके जो दिया तो आ गई थी।
क्या बोला था उन्होंने, नजीब ने आपसे क्या कहा था?
नजीब ने मुझे फोन करके ये कहा, अम्मी, मैंने, तुम कहाँ होती रात, मुझे क्यों फोन कर रहे हो, ठीक हो तुम? अल्लाह बोला, अम्मी क्यों किया, बोले मैं यहाँ आऊँ सफदरजंग में, मैं क्यों, मैं खड़ी हो गई बिस्तर पे से, कहने लगा बोला ये लोग मेरा मेडिकल करा लेना है। मैंने, क्या हुआ तुम्हें? उसने फोन कर दिया, मैंने उसके रूम पार्टनर को फोन किया, क्या हुआ मेरे नजीब को, क्यों रह गया सफदरजंग? उन्होंने बताया, आंटी थोड़ी चोटे वोटे आई हैं उसको, उसका हम मेडिकल कराने लाए हैं, और ये लोग मेडिकल नहीं कर रहे हैं, वो कह रहा है पहले पुलिस में जाओ फिर मेडिकल करेंगे, ये आपके पास आने को कह रहा है, अम्मी अम्मी के पास जाना है, मुझे अम्मी के पास जाना है। तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ मेरे बच्चे के पास, आप उसे संभाल लो, मैं बैठी हूँ बस में, रास्ते में मेरी बात हुई उससे, और फिर आनंद विहार पहुँच के लास्ट बार बात हुई, उसके बाद मैंने उसको बताया मैं आनंद विहार पहुँच गई हूँ, और जब मैं आई हूँ तो मेरे बच्चे की एक चप्पल नीचे फर्श पे पड़ी थी, एक ऊपर सीढ़ी पे पड़ी थी, चप्पल देख के मैंने, मेरे बेटे को साथ में था छोटा उसका भाई, मैंने कहा देखो भैया की चप्पल यहाँ पड़ी है, मैं देख के थोड़ी परेशान हो गई, मम्मी ऊपर चलो नजीब भाई ऊपर होंगे, मैं ऊपर जब जाके देखा तो मेरा बच्चा रूम में नहीं था, उसका जो पार्टनर था वो बैठा हुआ था वहाँ। मैंने पूछा नजीब कहाँ, कहने लगा मैं अभी था नहीं, अभी आया हूँ, नजीब मिल के ही होंगे।
फातिमा जी, नजीब के अब्बू क्या करते हैं, वो कहाँ है इस वक्त और परिवार में?
नजीब के अब्बू बदायूं में ही है, मेरी एक बेटी है वहाँ पे, एक बेटा है, और उसके पापा जो हैं वो हार्ट पेशेंट भी हैं और एक्सीडेंटल भी हैं।
उनके लिए अपने बच्चे को JNU भेजना अपने आप में काफी स्ट्रगल भरा रहा होगा।
बहुत, मेरा बच्चा था ही इतना जीनियस, वो JNU आ गया, मैं तो कह रही हूँ देखो तुम्हारे खानदान में कोई नहीं पहुँचा, मेरे बच्चे ने तुम्हारा कहाँ से कहाँ नाम कर दिया, JNU पहुँच कोई नहीं, मैं तो एक छोटी सी जगह से गरीब इंसान, मेरे बच्चे पढ़ने लिखने आया था, बिजली के बाद मेरे बच्चे इस तरह फिर गायब हो जाएगा, जामिया में कैंसिल करा के JNU आया था, प्लीज मेरी मदद करें, नाम चंद रपट लिखाई है मैंने उनकी, उनको नाम दिए पुलिस को, सब लोगों के कोई इंटरेस्टमेंट नहीं हो रहा है, उन्हें अंदर किया जाए, मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए, मेरे बच्चों को हाजिर किया जाए, जहाँ भी है उसको मेरे सामने लाके रखा जाए, मैं अपने बच्चों को लेके चली जाऊंगी, प्लीज मेरी मदद करें।
नजीब अहमद की माँ से बात कर रहे थे विनीत खरे। उधर JNU ने एक बयान में कहा है कि वो 14 अक्टूबर की घटना को निपटाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है और सभी अधिकारियों से कहा गया है कि वो गायब हुए छात्र नजीब अहमद को ढूंढने में पूरी मदद करें। JNU का कहना है कि उन्होंने जांच के लिए दिल्ली पुलिस की मदद ली है और प्रशासन पुलिस के संपर्क में है। पुलिस ने IPC 365 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है, और साथ ही केंद्रीय एजेंसीज जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और CBI की भी मदद ली जा रही है।
दिन भर शॉर्टवेव 25, 31 और 41 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,595 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। हाल ही में थाईलैंड के राजा पोमिपोन का निधन हो गया था। थाईलैंड राजनीतिक तौर पर अस्थिर रहा है और राजा पोमिपोन के निधन के बाद थाईलैंड के भविष्य से जुड़े कई सवाल एक बार फिर सतह पर आ गए हैं। दुनिया जहान में आज मोहनलाल शर्मा थाईलैंड के बीते कल, आज और आने वाले कल से जुड़े सवालों की पड़ताल कर रहे हैं।
दुनिया जहां, ४९४६ में राजसत्ता संभालने के 7 दशक तक शासन करने वाले थाईलैंड के महाराजा पोमिपोन अद्युम्नदेत के निधन के साथ ही देश शोक में डूब गया है। उस दिन भारी तादाद में लोग उस सिरिराज अस्पताल के बाहर इकट्ठे थे जहां उनका निधन हुआ। जैसे ही महाराजा के निधन की खबर सामने आई, लोग अपनी भावनाओं और आंसुओं को उमड़ने से रोक न सके। महाराजा के देहांत के बाद जिस बैंकॉक को दुनिया भर में अपनी नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, बिल्कुल बदल गया है। महाराजा के सम्मान में 30 दिन का शोक है। शोक के चलते शहर में तेज म्यूजिक पर पाबंदी है और किसी भी तरह के मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं। छुट्टियां बिताने आए पर्यटकों को खाली सड़कें और बंद बाजार मिल रहे हैं। पर्यटकों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पर्यटकों को सलीके से पेश आने को कहा गया है। समुद्र तटों के अलावा अन्य सार्वजनिक जगहों पर पूरी बांह के काले कपड़े पहनने को कहा गया है ताकि किंग के प्रति वो सम्मान दिखा सके। रेस्तरा और शराब खानों में पीने पर तो रोक नहीं है, लेकिन एक सीमा के भीतर रहकर ही।
Don't get too drunk, don't make big party and it might be upset people.
और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजा या फिर राजशाही से जुड़ी कोई भी बात भूल से भी मजाक में भी ना कहे, यहाँ तक कि जिस गाड़ी में आप सफर कर रहे हो उसके चालक से भी नहीं, वरना वो आपको राजशाही के अपमान में जेल पहुंचा सकता है। हालांकि महाराज पोमिपोन देश की रोजमर्रा की राजनीति में दखल नहीं देते थे, लेकिन उनका दर्जा काफी बड़ा था। अब दुनिया भर की नजरें इस बात पर हैं कि पहले से ही राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहे थाईलैंड का भविष्य उनके निधन के बाद क्या होगा, क्योंकि देश में 2014 से ही सैन्य शासन लागू है। देश के प्रधानमंत्री प्रत्युत चान ओचा ने कहा,
पूरे देश में हर जगह हर किसी को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है ताकि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगर कोई भी संदिग्ध हरकत दिखे तो स्थानीय कार्यकर्ताओं, पुलिस या फिर सेना को सूचित करें।
7 करोड़ की आबादी वाले देश में राजनीतिक उतार चढ़ाव और तेजी से बदलते घटनाक्रम के दौरान महाराजा भूमिपून को स्थिरता का स्तंभ माना जाता रहा। उनके शासन के दौरान थाईलैंड में 10 बार सैन्य तख्तापलट हुआ, जिसमें सबसे ताजा तख्तापलट 2014 में हुआ। 2014 में निर्वाचित सरकार के तख्तापलट के बाद प्रधानमंत्री प्रत्युत चान ओचा की सैन्य सरकार ने सत्ता पर पकड़ मजबूत कर ली। उनके निधन के बाद देश के राजनीतिक हालात पर क्या कोई असर पड़ेगा? 1994 से 1997 तक थाईलैंड में भारत के राजदूत रहे रंजीत गुप्ता कहते हैं,
आर्मी का जो रोल रहा है थाईलैंड में वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई चली गईं, 2001 से जितने भी इलेक्शन हुए हैं थाक्सिन या उनके जो नुमाइंदे थे वो इलेक्ट हुए हैं। तो बैंकॉक का जो ये गुट है, कोटरी है, आर्मी, गवर्नमेंट, एरिस्टोक्रेसी, इनके हित में ये देश चला है, क्योंकि इनके सबके रिश्ते महाराज धीराज से बहुत अच्छे थे। पर ये चल गया क्योंकि आम जनता थी वो महाराज धीराज को भगवान की तरह मानती थी। वो जो ब्रिज था अब वो ब्रिज नहीं रहा।
महाराजा भूमिपून हालांकि संवैधानिक रूप से बनाए गए राजा थे जिनकी शक्तियां सीमित थी, लेकिन उन्हें देश में कमोवेश भगवान जैसा दर्जा हासिल था। थाईलैंड में भारत के राजदूत रहे विवेक काटजू कहते हैं,
यद्यपि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राजा थे और उनकी जो शक्तियां थी वो संविधान के तहत सीमित, लेकिन उनका प्रभाव इतना था कि जो वो कहते थे उसको थाईलैंड का हर वर्ग, हर नागरिक और सरकार, चाहे वो मिलिट्री की हो या चुनी हुई सरकार हो, सर्वोच्च आदेश मानती थी। और कई बार तो उन्होंने थाईलैंड के राष्ट्रीय जीवन में इशारे से एक स्टेबिलिटी दी, एक स्थिरता दी, जो कि थाईलैंड में स्थिरता बरकरार रखी।
महाराजा की मौत के 2 दिन पहले 11 अक्टूबर को सरकार को नए संविधान का अंतिम मसौदा मिला। इसकी स्वीकृति अगस्त में जनमत संग्रह में मिल गई थी, पर नया संविधान लागू होने से पहले उस पर शासक का हस्ताक्षर होना जरूरी है। महाराजा के निधन का देश की राजनीतिक स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा? बैंकॉक की एक निजी कंपनी में काम कर रहे प्रियरंजन कहते हैं,
पिछले 10 साल से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो रही है, थोड़े लोग के बीच में तनाव है, लाल पीले शर्ट के हिसाब से लोग थोड़े बटे हुए हैं, और 2014 में फिर से ये तनाव हुआ था जिसके कारण मिलिट्री को और आर्मी को आना पड़ा, और अभी उन्हीं की सरकार है, उनके द्वारा जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो लोगों ने पास कर दिया है, उसके लिए रेफरेंडम हुआ था। उम्मीद है कि अगले साल इलेक्शन होगी, सो फिर से जो भी राजनीतिक पार्टी जीतेगी वो बनाएगी सरकार।
थाईलैंड में लाल शर्टधारी और पीली शर्टधारी लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं।
The supporters of the former Prime Minister Thaksin Shinawat. They want political change and they want it now.
2010 में हजारों लाल शर्टधारी प्रदर्शनकारियों ने राजधानी बैंकॉक में प्रदर्शन किए थे। लाल शर्टधारी प्रदर्शनकारी थाईलैंड के ग्रामीण इलाकों से थे। थाईलैंड में थाक्सिन के समर्थक और विरोधी दोनों के बीच सत्ता संघर्ष चलता रहा और दोनों ही धड़े राजा के नाम और उनकी छवि का इस्तेमाल करते रहे हैं। रंजीत गुप्ता कहते हैं,
बैंकॉक और बैंकॉक के आसपास के जो शहर और एरिया है वो प्रॉस्परस एरिया है, बाकी पूरा थाईलैंड जो है काफी गरीबी है उसमें। तो थाक्सिन शिनावात जो हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी शुरू की थी 2001 में जब वो इलेक्ट हुए थे, वो उनके एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हर इलेक्शन उन्होंने जीता तब से, या उनके नुमाइंदों ने जीता, पर हर बार उनके गवर्नमेंट को हटा दिया गया आर्मी ने। अब ये जो मूवमेंट है, जो उनका रेड मूवमेंट, उनका पीला जो है, अब वो पीले मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो थाक्सिन जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, जो आम जनता का मूवमेंट है।
महाराजा भूमिपून के बाद राजकुमार वाजिरा लोंगकॉर्न को उनका उत्तराधिकारी चुना गया है। राजकुमार वारजी लोंगकॉर्न अपने पिता के मुकाबले कम लोकप्रिय हैं। उन्होंने 2014 में अपनी तीसरी पत्नी को तलाक दिया। तो सवाल ये है कि क्या उनके पुत्र महाराजा भूमिपून की विरासत को संभाल पाएंगे?
महाचक्री सिरिंदोन उनकी बेटी हैं। वो बहुत विद्वान लेडी हैं, बहुत सोशल वर्क करती हैं, बहुत पॉपुलर हैं, तो वो तो कर सकती थी। पर ये जो महाराज कुमार हैं, इनका जो चाल चलन जैसा है, ये वो अफेक्शन रिस्पेक्ट वो कमांड कर ही नहीं सकते। मेरे अनुमान में अगले 2-3-4 साल बड़े कठिन होने वाले हैं थाईलैंड के लिए, क्योंकि जो महाराज कुमार वाजीरा लोंगकोर्न हैं, इनका जो चाल चलन है, ये जो है, ये आम पब्लिक को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं।
दुनिया भर में पर्यटकों को अपनी ओर रिझाने वाला देश थाईलैंड फिलहाल अपने महाराजा के निधन के बाद शोकाकुल है। अब वहाँ कब चुनाव होंगे, कौन सत्तासीन होगा, या फिर सैन्य सत्ता ही जारी रहेगी? राजनीतिक अस्थिरता के इन सारे सवालों का जवाब भविष्य के थाईलैंड में छिपा है। मोहनलाल शर्मा, बीबीसी।
भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट सीरीज के बीच अहमदाबाद में खेला जा रहा कबड्डी विश्व कप भी अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। लगातार 4 जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। आदेश कुमार गुप्त।
इन दिनों अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा कबड्डी विश्व कप सेमीफाइनल दौर तक पहुंचने के करीब है, लेकिन मेजबान भारतीय टीम इंग्लैंड को 69-18 से हराने के बाद जरूर कल सेमीफाइनल में पहुंच गई। पूल ए में शामिल भारतीय कबड्डी टीम की ये लगातार 4th जीत रही और उसने 21 अंकों के साथ पूल में दूसरे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल का सफर तय किया, जबकि हैरतअंगेज रूप से दक्षिण कोरिया ने अपने सभी 5 मैच जीतते हुए 25 अंकों के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई। दक्षिण कोरिया ने अपने पहले ही मुकाबले में भारत को भी मात दी थी। दूसरी तरफ पूल बी में ईरान ने 5 में से 4 मैच जीते हैं और उसके 20 अंक हैं, ऐसे में वो भी सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर चुकी है। आज बांग्लादेश का सामना अर्जेंटीना से होगा। पूल ए में शामिल बांग्लादेश के 11 अंक हैं और अर्जेंटीना तो अपने 4 मैच हार चुका है, ऐसे में दोनों टीमों की हार जीत से इस पूल की शीर्ष टीमों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इंग्लैंड के खिलाफ जीत और सेमीफाइनल में ईरान के खिलाफ होने वाले संभावित सेमीफाइनल को लेकर भारत के पूर्व कप्तान दिनेश कुमार कहते हैं,
एक्चुअली में जो हमारे सीनियर खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं, अनूप कुमार, मंजीत छिल्लर, अजय ठाकुर, तो इनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। सेमीफाइनल हिंदुस्तान का और ईरान का होगा, बहुत अच्छी टीम है ईरान की, आपने देखा होगा पिछला एशियन गेम्स, उसमें लास्ट ओनली 2 मिनट में हिंदुस्तान ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा इजी लेके ना खेलें, पूरा विश्वास के साथ एक एक टेक्निक के साथ खेलेंगे तो ईरान के साथ हमारी अच्छी टीम खेलेगी हिंदुस्तान।
वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले आज दोनों टीमों की कमेंट्री कर रहे पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ट्विटर पर भारत के स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा से उलझ गए। हुआ ये कि सानिया मिर्जा पिछले 80 सप्ताह से लगातार नंबर 1 पर है और जैसे ही उन्होंने आज ये ट्वीट किया तो संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया, कहीं आपका मतलब डबल्स में नंबर 1 होने से तो नहीं है, बधाई। बस इसके बाद सानिया मिर्जा ने भी जवाबी ट्वीट किया, ये तो कॉमन सेंस की बात है, और उसके बाद उन्होंने मैचों से जुड़ी जानकारी का लेख संजय मांजरेकर को भेज दिया। इससे पहले सानिया मिर्जा ने ट्वीट किया, आपको पता होना चाहिए मैं सिंगल्स नहीं खेलती। इस पर संजय मांजरेकर ने भी जवाबी ट्वीट किया, आपने मुझ जैसे कम कॉमन सेंस वाले व्यक्ति को ये महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी, हाँ लेख में भी डबल्स में नंबर 1 वाली खिलाड़ी बताया गया है, मैं भी यही कहना चाहता था और अब मैं ऑफ स्टंप से बाहर जाते गेंदों को छोड़ दूंगा। यानी उनका इशारा साफ था कि अब वो इस विवाद में और उलझना नहीं चाहते।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। इराक में खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन के कब्जे वाले मौसुल शहर से हजारों लोग पलायन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने कांगो के पूर्व उपराष्ट्रपति जेन पियर बेम्बा को सबूतों के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाया है। रूस, यूक्रेन और फ्रांस के नेता यूक्रेन शांतिवार्ता के लिए आज बर्लिन में जमा हो रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को इस बैठक से कोई खास उम्मीद नहीं है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम, रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।